الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ یوسف کی تفسیر ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں، معرفت القرآن جلد نمبر 5 سے آیات نمبر 25 سے 29 تک کی 29 تک کی ہم پڑھ رہے ہیں آج کل تفسیر. خلاصہ تفسیر مکمل ہو گئی تھی، معرف و مسائل چل رہے تھے پیج نمبر 54 کے اوپر. سکرین شیئر پہ انہوں نے پیج ڈسپلے کیا ہوا ہوگا بھی، تو ہم اس پر آگے بڑھتے ہیں کہ واقعہ چل رہا ہے کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ زلیخا کا شوہر یعنی جو عزیز مصر تھا وہ داخل ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ بچنے کی بھرپور کوشش کری تھی، اور سامنے باپ کے نزدیک یعنی دروازے کے نزدیک یہ عزیز مصر جو ہے وہ نمودار ہوا. تو بات چیت ہوئی اور عزیز مصر کو دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا. تو اب کیسے فیصلہ کرے کہ کون سچ بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو گویائی عطا فرما دی. تو اس پیراگراف کے اوپر یعنی دوسرا پیراگراف پیج 54 کے اوپر ہم تھے کہ ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے تعالیٰ نے گویائی عطا فرما دی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکیمانہ انداز کی. یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارے کے اندر پڑا تھا، یہ کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے سمجھے گا، اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا. ٹھیک ہے، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں مجاہدہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس CID ہے. ٹھیک ہے، CID کا ابریویشن جو ہمارے یہاں مشہور ہے خفیہ پولیس کے لیے، عرب ملکوں کے اندر اس کو CID نہیں کہتے، اس کو سیکرٹ پولیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امریکہ وغیرہ میں اس کو جو ہے وہ FBI کہتے ہیں، کہیں پہ کچھ اور کہتے ہیں، کہیں پہ کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے یہاں CID کہتے ہیں، پاکستان میں تو حضرت نے CID لکھ دیا. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس ہے جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کے شاہد ہیں، خود ہر چیز کے اوپر علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کا نظام بھی بنایا ہوا ہے جو کہ ان ساری چیزوں کا ریکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اٹس آل بینگ ریکارڈڈ آلسو، یعنی کہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آگے کچھ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی بلکہ ریکارڈنگ کا سسٹم بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا کیا، کس مقصد سے یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ میدان حشر میں، قیامت کے دن میں، حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بنا پر جب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ دنیا کے اندر عادتیں جو ہیں نا، جو پختہ عادتیں ہیں اور مرتے دم تک جو عادتیں جاری رہیں انسان کی، یہ عادتیں پھر میدان حشر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، میدان حشر میں بھی یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہاں پر بھی اسی عادت کے مطابق یہ انسان بیہیو کرے گا جو اس کی دنیا کے اندر عادت تھی. بظاہر تو لگتا ہے نا کہ جی قبر میں چلے جائیں گے، عادت وادت سب ختم ہو جائے گی، جہاں جسم مٹی میں مل جائے گا تو وہاں پر عادت بھی مٹی میں مل جائے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جسم مٹی میں ملے گا، روح تو ویسے بھی مٹی میں نہیں ملے گی، اور عادت جو ہوتی ہے نا یہ انسان کی روح کا حصہ بن جاتی ہے، روح کا حصہ. ٹھیک ہے، اور اگلے جہان کے اندر जो सारा का सारा मामला है वो रूह का है, जिस तरह पिछले जहान के अंदर सारा का सारा मामला रूह का था। अभी बच्चों की सीरत क्लास के अंदर भी ये टॉपिक आया था कि गोरे और काले की तो बड़ी फौकियत नजर आती है, गोरों की फौकियत, राइट, कि जी कुरान मजीद के अंदर जहां पर कयामत के दिन का तस्करे हैं के तस्करे हैं, तो वहां पर तबयद्दु वजूहुहुम व तस्वद्दु वजूहुहुम, तो तबयद्दु वजूह यानी जिनके चेहरे गोरे होंगे तो वो जन्नत में जाने वाले लोग होंगे, और जिनके चेहरे काले होंगे वो जहन्नम में जाने वाले लोग होंगे। तो फिर तो अमेरिका यूरोप सारा का सारा जन्नत में, और हमारे पठान भाई सारे के सारे जन्नत में, और बाकी जो है वो हिंदुस्तानी है ना जरा, और वो भी साउथ इंडियन या अफ्रीकी, वो तो सारे के सारे जहन्नम में, इसका मतलब है, ठीक है? तो नहीं, बल्कि यहां पर सफेदी और स्याही जो है वो रूह की बात हो रही है, रूहानी सफेदी और रूहानी कालक कालक, ठीक है? और यही जो है वो पिछले जहान के अंदर भी, जब आलम अरवाह के अंदर इंसान थे तो वहां पर भी रूहानी बात सारी की सारी चल रही थी। तो दुनिया के अंदर जो 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 मामलात हैं, तो ये आखिरत के अंदर जाकर के रूहानी मामलात सारे के सारे सामने आ जाएंगे। रूहानी आदत, ये आदतें जो होती हैं ये रूह का हिस्सा बन जाती हैं। दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट टू अस, कि हम आदत को ये ना समझें कि बस हमारा दुनिया से इसका ताल्लुक है और हमारे जिस्म का मामला है, जिस्म खत्म हुआ तो आदत भी खत्म हो गई। नहीं, जो आपकी आदत बन गई वो रूह का हिस्सा बन चुकी वो, ठीक है? तो इस वजह से बुरी आदतें इनको हम लाइटली नहीं ले सकते, इनको हम हल्का नहीं ले सकते, नॉन सीरियसली नहीं ले सकते कि बस ये तो बस आदत ही थी और बस दुनिया के साथ खत्म हो जाएगी, और नहीं, ये चलेगी, ठीक है? और अच्छी आदत जो है वो इंसान को फायदा पहुंचाएगी। इस वजह से ना आदत के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, बुरी आदतों को खत्म करने के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? और अच्छी बात को, अच्छे काम को आदत बनाने के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो आदत बन जाए, ठीक है? ताकि कयामत के दिन फिर वो जारी रहे। तो यहां पर हजरत ने क्या फरमाया कि दुनिया में जिसकी आदत थी कि वो अपने गलतियों का इकरार नहीं करता था, ठीक है ना, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन विद सम एक्सेप्शंस ओनली, जिनको कि शायद फिंगर के ऊपर काउंट किया जा सके, फिंगर्स के ऊपर काउंट किया जा सके, हमारी भी ये एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक बन गई है कि वी विल नॉट एडमिट आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलती का इकरार नहीं करना चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना? हम 10,000 हुज्जतें पेश करेंगे, और अपनी जितनी हमें जहानत अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर दे दी है ना, ठीक है, जितनी जहानत दे दी है फॉर वट एवर रीजन अल्लाह ताला ने दी हुई है, उस जहानत को हम सिर्फ इस 400 BC के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको 400 BC कहा जाता है, ठीक है, कि जिसकी यानी बस किसी तरीके से जो है ना वो हुज्जत बना करके और बहाने बना करके और झूठ बोल करके और जो है ना वो अगले बंदे को बेवकूफ बना करके बस किसी तरीके से मसले को उस वक्त के लिए जुगाड़, जिसको जुगाड़ भी कहते हैं, जुगाड़ के तरीके से। अब ये जुगाड़े जो है वो दुनियावी एतबार से तो चल जाती हैं, जैसे कि माशाल्लाह हमें अल्लाह ने इतनी जहानत दी है कि आए थे है ना, वो जो हम चीज लेकर के आए थे घर में टंगवाने के लिए आईना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसके अंदर, ठीक है? लेकिन हमारे भाई साहब ने जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बावजूद ऐसी जुगाड़ लगाई कि मसला ही हल हो गया सारा का सारा। तो जहानत बड़ी है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन इस जहानत को जो है ना हमने झूठ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हर एक को धोखा देते हैं, गैरों को तो धोखा देते थे, अपनों को भी धोखा देते हैं, दुनिया वालों को तो धोखा देते थे, दीन वालों को भी धोखा देते हैं, हत्ता के मखलूक को तो धोखा देते ही थे, खालिक को भी धोखा देने की कोशिश शुरू कर दी, खालिक को भी धोखा देने की कोशिश, नाकाम कोशिश ऑफ कोर्स, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना, अल्लाह को भी धोखा देने की, ठीक है ना? युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्तऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ठीक है, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो बदतरीन मखलूक से जो है वो जाकर के हमारा नसब जो है वो जुड़ जाता है, जब हम अल्लाह को और दीन वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो लजीना आमनू, ठीक है? तो बहुत 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 तो की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है ना वो इसका यानी इसको सीरियसली लेने की जरूरत है कि हम क्यों करते हैं ये वाला काम, क्यों कर रहे हैं, हम बहुत बहुत बुरा कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है? तो हमारी आदत बनी हुई है हुज्जतबाजी, धोखेबाजी, और अपनी मिस्टेक को एडमिट ना करना। भाई गलती हो गई, इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक? ठीक है ना, आपको खुद, हमें खुद ये तजुर्बा होता है कि जब कोई छोटा बड़े के सामने जाकर, आपके सामने जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सामने कोई बच्चा आकर के जब अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लेता है तो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है, सारी नाराजगी खत्म हो जाती है, और उसको कह देते हैं कि भाई ठीक है, आप आइंदा मत कीजिएगा, इस मिस्टेक से जो है वो आप सीख लें, लेट दिस बी एन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ। राइट, हम खुद ये काम कर रहे होते हैं कि छोटे को हम माफ कर रहे होते हैं और हमारा गुस्सा खत्म हो रहा होता है, नाराजगी खत्म हो रही होती है, लेकिन जब बड़े के सामने जाते हैं ना बिल्कुल भूल जाते हैं कि यही काम भाई हमने भी तो अपने बड़े के साथ करना था ना। बात को मान लो, खामोश हो जाओ, जी कह लो, सर झुका लो, तस्लीम कर लो अपनी गलती को, तो मामला रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करते अपने बड़ों के सामने ये वाला काम। ठीक है, तो यही हमारी आदत बनी हुई है और यही आदत जो है वो कयामत तक हमारा साथ देगी, और ये फिर उसके बाद साथ देगी जहन्नुम में जाने के लिए। ठीक है, तो जिसकी भी आदत है, जो ये हरकतें कर रहा है, हमारा तो बहुत छोटा सा एक, बहुत ही छोटा सा हल्का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने छोटे से हल्के के अंदर भी हमें इस किस्म की चीजों से डील करना पड़ता है। ठीक है ना, हमारे हजरत तो बिला वजह का डांटते थे और खुद कहते भी थे बाद में कि मैंने इसको बिला वजह का डांटा है। ठीक है ना, तो भाई बड़े तो इसलाह के लिए डांट रहे होते हैं, नफ्स को कुचलने के लिए डांट रहे होते हैं, या जो है वो उस बंदे की गलती को दुरुस्त करने के लिए, ताकि इसका अपना फायदा हो जाए, लेकिन हम उसको एडमिट करेंगे तो हमारा फायदा होगा ना। हम आगे से जो है वो जवाब देना शुरू कर देंगे और अपनी जो है वो, यानी अपने आप को हर वक्त जो है वो जस्टिफाई करना और अपनी सफाई पेश करना। ठीक है, तो इससे तो फिर हमारा फायदा बिल्कुल रुक जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमारा फायदा, और उल्टा जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये नाकाम लोगों की आदत है कि अपने जरायम का इकबाल करने से इनकार करते। ठीक है, तो ये वहां पर भी यही काम करेंगे, तो उसी के फिर हाथ पांव और खाल और दरो दीवार उसके खिलाफ गवाह बना करके खड़ा कर दिया जाएगा। वो उसकी एक एक हरकत को महशर के अजीम शान मजमे के सामने खोल कर रख देगा। उस वक्त इंसान को पता लगेगा कि हाथ पांव और घर के दरो दीवार और हिफाजती इंतजामात में से कोई भी मेरा नहीं था, बल्कि ये सब रब्बुल इज्जत के खुफिया कारिंदे थे। ठीक है, तो हिसाब किताब तो अल्लाह ने लेना है ना। बात आजकल बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि पीर साहब ने हिसाब किताब नहीं लेना, हजरत ने हिसाब किताब नहीं लेना, चाहे बड़े हजरत हो चाहे छोटे हजरत हो, किसी ने हिसाब किताब नहीं लेना। हजरत को तो पता भी नहीं कि दीवार के दूसरी पार हो क्या रहा है। खाम खा का मैं अपने हजरात को जो है ना वो आलमुल गैब और आलमुल कशफ व करामात और यानी इन सारी चीजों का जो है वो तोहफा पहले देते हैं, फिर उसके बाद उनको अपना हजरत बनाते हैं। जो बेचारे जिसके पास कशफ व करामात हम प्रूव नहीं कर पाते, उनको हम हजरत भी नहीं बनाते फिर। ठीक है ना, हमारे स्टैंडर्ड ही इतने हाई हैं, उड़ने वाले को ही हजरत बनाएंगे चाहे वो किसी भी तरीके से उड़ता हो। इसलाह की तो हमें फिक्र है नहीं, तो इस वजह से जिसका काम इसलाह करना हो उसको हम लिफ्ट नहीं कराना चाहते। ठीक है, तो भाई ये सारे काम हजरत के नहीं होते, ये सारे काम पीर साहब और शेख साहब के नहीं होते, ये अल्लाह के काम है, और अल्लाह ताला को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। दीन के ऊपर क्यों चल रहे हैं? इस दीन के ऊपर क्या है? इस दीन के अंदर हमारे लिए चंद पाबंदियां, राइट, जो अम्मी ने बता दी, जो अब्बा ने बता दी, जो मौलवी साहब ने बता दी, ये पाबंदियां, बस यही है दीन का नाम? अल्लाह किधर गया इस दीन के अंदर से? अगर अल्लाह नहीं है जो कि आपको देख रहा है, हमें देख रहा है, और उसने हमारा हिसाब किताब करना है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो फिर इस दीन का क्या हैसियत रह गई है? बुत कदाए तसव्वुरात, सिर्फ ये बुत कदाए तसव्वुरात हैं। हिंदुओं के अपने तसव्वुरात हैं, ईसाइयों के अपने तसव्वुरात हैं, यहूदियों के अपने तसव्वुरात हैं, बुद्ध मत वालों के अपने तसव्वुरात हैं, और मुसलमानों के अपने तसव्वुरात हैं। दैट्स व्हाट इट इज, राइट? अगर अल्लाह और आखिरत को निकाल दिया जाए तो फिर तो ये एक रिवायतें हैं ना। उसवाए हसना भी फिर क्या रह जाता है? नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हसना फिर इंसान के लिए क्या रह जाता है? कि भाई जो नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो किए थे, उन्होंने मोहम्मद अरबी ने बहुत अच्छे अच्छे काम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े बड़े जबरदस्त नतायज निकले दुनिया के अंदर उससे, है ना, एकदम से जो है ना वो मुस्लिम एम्पायर जो है वो एकदम ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक फैल गई। चलो जी हम भी वही काम करते हैं, हमारी भी एम्पायर ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक फैल जाएगी। इस वजह से नहीं कि ये काम कर रहे हैं, अल्लाह और आखिरत के लिए नहीं कर रहे हैं, बस रिजल्ट्स के लिए कर रहे हैं। जैसे रिजल्ट्स उनको मिल गए थे, हमें भी वैसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस दीन, ये दीन नहीं है। ठीक है, तो अब इंसान जो है ना वो अपने जोम के अंदर यही समझ रहा होता है कि जी या तो जराइम को मान रहा होता है, अपने दिल के अंदर मान रहा होता है, लेकिन बड़े के सामने नहीं मानता, खुजतबाजी कर रहा होता है। अंदर तो उसको पता है कि उसने गलत काम किया है, ठीक है, लेकिन ये पुराने जमाने का मसला था। आज क्या मसला है इस दौर का, फितने दज्जाल के जमाने का मसला क्या है कि फितने दज्जाल टेंड्स टू रीडिफाइन राइट एंड रॉन्ग, रीडिफाइन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो जो फितने दज्जाल से हिफाजत का इंतजाम नहीं कर रहा ना, तो उसके यहाँ राइट की डेफिनेशन गलत रॉन्ग बन चुकी है और रॉन्ग की डेफिनेशन राइट बन चुकी है, ठीक है ना। तो अब जब तक कोई उसको बताए नहीं, प्रूव नहीं करे कि भाई आप जिस चीज को सही समझ रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, और जिस चीज को सही समझ रहे हैं ये, जिस चीज को गलत समझ रहे हैं ये, तो ये सही काम है, ठीक है, तो उस वक्त तक ये बंदा जो है वो अपने आप को सही समझेगा और बिल्कुल सच्चा सही समझेगा, हालांकि बिल्कुल इसकी गलत डेफिनेशन होंगी, ठीक है। तो उसके लिए तो भाई इल्म का इंतजाम करना पड़ेगा ना, अपने आप को प्री एज्यूम करके जी आई नो एवरीथिंग, यहां से अगर आप अपना इल्म शुरू करेंगे तो फिर अगले बंदे की तो फिर आपने सुननी नहीं है उसके बाद, जो आपका आपकी अकल या आपका नफ्स जो है जो सही कह देगा बस वही सही है, ठीक है। पता चला सारी जिंदगी गुजारने के बाद आखिर में पता चला कि जिस चीज को मैं सारी जिंदगी सही समझ रहा था वो तो गलत थी, जब मलकुल मौत साहब ने आकर के अपना शक्ल दिखाई, तो ड्राउनी शक्ल के साथ आए, पता चल गया कि जी अब तक की सारी तारीफात गलत थी, ठीक है ना। तो खाली जो है ना वो दीन के रास्ते के ऊपर मेहनत करने से कामयाबी नहीं होती, ठीक है ना। हल अता का हदीसुल गाशिया वुजूह यौम इज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन खामिया, राइट, कि चेहरे जो है ना वो खाशिया होंगे, झुके हुए होंगे, और आमिलतुन नासिबा यानी उसने अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत अमल किया होगा, आमिल, ठीक है ना, और नासिब, फैजा फरख्ता फन सब, सूरह अलम नशरा के अंदर क्या है, फैजा फरख्ता, जब आप फारिग हो जाए ना फिर अपने आप को और लगाइए और मेहनत कीजिए और अपने आप को जुताइए काम के अंदर, फन सब, वही लफ्ज यहां पर है, आमिरतुन नासिबतुन, हर वक्त जुता हुआ है मेहनत करने के अंदर। कौन सी वाली मेहनत, दीनी मेहनत की बात हो रही है यहां पर, लेकिन होगा क्या इसके साथ, तस्ला नारन खामिया, अरबी वाला तस्ला, उर्दू वाला तस्ला नहीं, या अंग्रेजी वाला टेस्ला नहीं है, फेंक दिया जाएगा खामिया वाली आग के अंदर। एक इसी तरीके से एक राहिब आया उमर रज़ी अल्लाह के सामने, थकन से चूर था, उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो मेहनत के आसार थे कि जितनी वो इबादतें किया करता था, उमर रज़ी अल्लाह तआला उसको देख करके रो पड़े उसको देख करके, कितनी मेहनत कर रहा है लेकिन अपने नफ्स की मर्जी से मेहनत कर रहा है, अल्लाह के नबियों के बताए हुए तरीके के मुताबिक मेहनत नहीं कर रहा, तो वो क्या टाइम वेस्ट कर रहा था, अपना जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा था, नहीं, वो तो जान जिस चीज को सही समझ रहा था वो उसके ऊपर मेहनत कर रहा था, ठीक है, लेकिन तकब्बुर की वजह से, अनानियत और जिद की वजह से उसने सीखने से इनकार कर दिया, पूछने से इनकार कर दिया, तो इसका नतीजा क्या हुआ, तस्ला नारन खामिया, ठीक है। तो जो इसी तरह की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, तो फिर वो अपने जरायम का इकबाल नहीं कर रहा होता इधर वे, चाहे वो जान करके नहीं कर रहा होता, सिर्फ जो है वो अपना फेस सेविंग करने के लिए, या ये कि वो चूंकि उसको सही समझ रहा होता है इस वजह से वो इकबाल नहीं कर रहा होता, लेकिन कयामत के दिन तो फिर सारे के सारे गवाह और सारी के सारी जो 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 एविडेंसेस हैं सही और गलत की, कि ये सही है और ये गलत है, सारी की सारी दलील जो है वो कयामत के दिन खुल जाएगी। तो ये वक्त है, यही जिंदगी है जिसके अंदर हमने सही और गलत की सही तारीफ पहले सीखनी है, पहले सीखनी है, इल्म हासिल करना है सही और गलत का, आलिमा कोर्स और आलिम कोर्स की यहां पे बात नहीं हो रही, फराइज की और गुनाहों के इल्म की बात हो रही है, ये इल्म हासिल करना और फिर उस इल्म के ऊपर अमल करना इखलास के साथ, तब कयामत के दिन इन चीजों से हम बच सकेंगे, अल्लाह ताला हम सबसे तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाते हैं कि वो उसकी यानी ये खुफिया कारिंदे थे, ये सारी चीजें खोल देंगे। खुलासा ये है कि ये छोटा बच्चा जो गहवारे में बजाहिर इस दुनिया की हर चीज से गाफिल और बेखबर पड़ा था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजजे के तौर पर आयन उस वक्त बोल उठा जबकि अजीज मिस्र इस वाकये से कशमकश में मुब्तला था। फिर ये बच्चा अगर सिर्फ इतना ही कहता था यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी है जुलैखा का कसूर है, तो वो भी एक मौजजे की हैसियत से यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में बरात की बड़ी शहादत होती। मगर अल्लाह ताला ने इस बच्चे की जुबान पर एक हकीमाना बात कहलवाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो, अगर वो आगे से फटा है तब तो जुलैखा का कहना सच्चा और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हो सकते हैं, और अगर वो पीछे से फटा है तो इसमें इसके सिवा कोई दूसरा एहतमाल ही नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और जुलैखा उनको रोकना चाह रही थी। ये एक ऐसी बात थी कि बच्चे की गुजाई के एजाज के अलावा खुद भी हर एक की समझ में आ सकती थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, राइट। नबियों का क्या काम है जो कि उनसे उम्मत ने विरसे में लिया है, बलागुल मुबीन, बात का पहुंचा देना और ऐसे पहुंचाना कि अगले बंदे को समझ भी आ रहा हो, राइट। मतलब क्या है कि अपनी कोशिश करना अगले बंदे की, यानी ऑडियंस की कैपेबिलिटी और ऑडियंस की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, ऑडियंस की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से जो है वो बात करना ताकि उसको समझ आए, अपनी कोशिश करना। अब नहीं समझ में आना वो फिर अल्लाह की मर्जी, लेकिन अपनी तरफ से तो इसकी कोशिश करना, यानी बस उठा करके आगे जिसको कहते हैं दे मारना, ऐसे नहीं करना। बस मैंने तो पहुंचा दिया, बलाग कर दिया मैंने, ठीक है ना, अब तुम समझो ना समझो मेरी बला से, ठीक है, ऐसे नहीं। आज साथियों के साथ बैठा हुआ था तो बता रहा था कि हमारे हजरत जब अमेरिका जाते थे ना और वहां पर जाकर के बयान करते थे तो उर्दू समझने वाली ऑडियंस के सामने उर्दू में बयान करते थे, लेकिन चूंकि हजरत का बैकग्राउंड जो है वो दुनियावी तालीम का भी था, इंजीनियर थे और है ना बहुत कुछ किया हुआ था, तो जो अंग्रेजी समझने वाली ऑडियंस होती थी उनके सामने अंग्रेजी में बयान करते थे। यानी नौजवान जो अमेरिका के बॉर्न एंड रेस्ड बच्चे होते थे या दूसरी कौमों के लोग होते थे, ठीक है, तो उनके सामने अंग्रेजी में बयान करते थे, लेकिन इसके बावजूद, अंग्रेजी में बयान करने के बावजूद, हजरत ने वहां के लोकल बच्चों को तैयार किया, नौजवानों को तैयार किया कि जी मदरसे भेजा, वहां से आलिम बन करके आए, और उसके अलावा उनको जिक्र सलूक और सब कुछ सिखाया, और उसके बाद जब वो तैयार हो गए तो फिर हजरत उनसे बयान करवाया करते थे और कहते थे हाँ कि जो बच्चे हैं ना उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, उनको इनकी बात समझ में आएगी, राइट। क्यों? क्योंकि समझाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, ये बात करने वाले की, बयान करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझाने की कोशिश करे और उसके लिए असबाब इख्तियार करिए, उसके लिए तदबीर इख्तियार करे कि अगले बंदे को समझ में आए उसकी बात। इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसी बात थी कि बच्चे की गोयाई के एजाज के अलावा खुद भी हर एक की समझ में आ सकती थी, और जब बतलाई हुई अलामत के मुताबिक कुर्ते का पीछे से शक होना मुशाहिदा किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत जाहिरी अलामत से भी जाहिर हो गई। शाहिद यूसुफ की जो तफसीर हमने बयान की है कि वो एक छोटा बच्चा था जिसको अल्लाह ताला ने बतौर मोजज़ा गोयाई अता फरमाई फरमा दी, ये एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जिसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुसनद में और इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही में और हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक में नकल करके हदीसे सही करार दिया है। इस हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने चार बच्चों को गहवारे में गोयाई अता फरमाई है, ये चारों वही हैं जो अभी जिक्र किए गए पीछे पिछले पेज के अंदर, ईसा अलैहि सलाम को गोयाई अता फरमाई और जुरैज आबिद के वाके वाले बच्चे को गोयाई अता फरमाई और यूसुफ अलैहि सलाम के वाके वाले बच्चे को गोयाई अता फरमाई, और चौथा जो यहाँ पे लिखा हुआ था मूसा अलैहि सलाम के वाके में जो बच्ची को गोयाई अता फरमाई। तो बस बाज रिवायात में शाहिद की दूसरी तफसीरें भी नकल की गई हैं, मगर इब्ने जरीर, इब्ने कसीर वगैरह आइमाए तफसीर ने पहली ही तफसीर को राजह करार दिया है। अब इसके अंदर अहकाम व मसाइल कुछ हजरत ने इसमें से मुस्तम्बत करके, डिराइव करके कुछ अहकाम और मसाइल यहाँ पर लिखे हैं, यानी शरी अहकाम इससे क्या निकलते हैं। आयात मस्कुरा से चंद अहम मसाइल और अहकाम निकलते हैं। अव्वल आयत वस्तवकल बाब से ये मालूम हुआ कि जिस जगह गुनाह में मुब्तला हो जाने का खतरा हो उस जगह ही को छोड़ देना चाहिए, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां से भाग कर उसका सबूत दिया। इसी वजह से हमारे मशाइख ने जो तौबा की तीसरी शर्त बयान फरमाई है, तीसरी शर्त, ठीक है, तौबा उसके बगैर कबूल नहीं होती, तो पहली शर्त तो नदामत, गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होना, ठीक है। दूसरी शर्त कि गुनाह ना करने का अल्लाह ताला के साथ इरादा करना, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और तीसरी शर्त यह है कि कोई ऐसा कदम उठाना कि जिससे कि फिर गुनाह से बचना मुमकिन भी हो सके, और उस कदम में सबसे सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा जो जो स्टेबल या बेहतरीन नतीजे वाला कदम होता है वो कि गुनाह की जगह को छोड़ देना, जैसे कि 100 बंदों के कातिल वाले वाकये के अंदर है कि जिसने 99 कत्ल किए थे, फिर वो आबिद के पास गया कि जी मैं मेरी तौबा कबूल होगी, आबिद ने कहा तुम्हारी नहीं कबूल होगी, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, अब 100 का कातिल हो गया। उसके बाद वो एक आलिम के पास गया, आलिम ने कहा कि हाँ तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, करो तुम अल्लाह ताला से तौबा कबूल हो जाएगी, तो इसने तौबा कर ली। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, आलिम ने कहा तुम इस बस्ती को छोड़ दो, इस बस्ती को छोड़ करके नेकों की बस्ती में चले जाओ, ठीक है। तो अब वो नेकों की बस्ती की तरफ चला था कि रास्ते में उसको मौत आ गई और अल्लाह ताला ने उसको जन्नत नसीब फरमा दी। वाकई यकीन सुना ही होगा आप सबने, ठीक है। तो गुनाह की जगह को छोड़ देना, गुनाह की सोहबत को छोड़ देना, गुनाह के जो असबाब हैं उनसे जो है वो अपने आप को दूर कर लेना, ठीक है। जैसे फोन, फोन के ऊपर ये गुनाह करता था, तो अब फोन जो है ना वो या तो अगर बिल्कुल छोड़ सकता है बिल्कुल छोड़ दे, वरना उसके ऊपर कोई ऐसी जो ऐसे कुछ प्रोटेक्शन लगा ले या कोई ऐसी चीज लगा ले कि जिससे कि जो है ना वो अच्छा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वरना तो ये इतना आसान काम नहीं होता, तो जो शादीशुदा है ना, पहले तो उनके लिए जो शादीशुदा हजरात है ना वो अपने फोन को अपनी बीवी के सामने खोल दें, बेगम साहिबा फिर आपको गुनाहों से बचाएंगी, ठीक है। ये बेगम साहिबा जो है ना ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये सिर्फ नाक में दम करने के लिए नहीं अल्लाह ताला ने पैदा करी है, ये जन्नत में पहुंचाने के लिए भी अल्लाह ताला ने पैदा करी है। ये बेगम जो है ना बीवी, ये बहुत बड़ी ढाल होती है एक मोमिन के लिए गुनाहों से बचाने की, शैतान के सामने। इसी वजह से पहली बात तो ये कि नेक बीवी तलाश करें, है ना। और अगर अब नहीं है, ऐसी लेकर के आ गए थे, अब बाद में एहसास हो रहा है, तो अल्लाह से दुआएं मांगें, बहुत ज्यादा दुआएं मांगें, ठीक है। तो नेक बीवी जो होती है ना वो दीन के कामों में शौहर की मदद भी करती है और शौहर की हिफाजत भी करती है शैतान के खिलाफ। पहले भी बात हो चुकी है कि जब लश्कर जाता था ना दुश्मन के इलाके में, तो जो अमीरे लश्कर होता था वो बीवी को साथ लेकर के जाता था। नबी अलैहिस्सलाम जब अमीरे लश्कर थे, ज़ौजा मुहतरमा साथ जाया करती थी। थोड़ा सा लंबा ट्रिप है, मतलब 5-10 दिन का अगर ट्रिप है, 2-4 दिन का ट्रिप है, उसके ऊपर तो नहीं, लेकिन जरा सा लंबा ट्रिप है, उसके ऊपर बेगम साहिबा साथ जा रही हैं। तो ये जो एक उस जमाने में ये इसका एहतमाम किया जाता था, तो इसकी बाकायदा मुफस्सरीन ने और उलमाए फुकहा ने इसके ऊपर बात करी कि क्यों ऐसा होता था। तो फरमाया कि बीवी जो है ना वो हिफाजत करती थी अमीर लश्कर की, ठीक है। किस चीज से हिफाजत करती थी? एक तो अमीर लश्कर साहब खुद अगर किसी चक्कर में मुब्तला हो गए तो लश्कर का क्या बनेगा, वो तो चले जाएंगे उनके साथ, जिन खातून के जुल्फों के असीर हो गए, ठीक है ना। या ये कि अगर वो खुद जुल्फों के असीर नहीं भी होए किसी के, तो कोई भी उनको स्कैंडल में मुब्तला कर सकता है, स्कैंडल में फंसा सकता है। हाँ भाई ये तो अमीर थे, इनके पास तो बड़ी ताकत थी, ये तो बड़े जो है ना वो अपने अपने इख्तियारात का इन्होंने नाजायज इस्तेमाल करके जो है ना इन्होंने ये हरकतें कर ली, स्कैंडल, ठीक है। बीवी साथ हो ना तो कोई स्कैंडल में भी मुब्तला नहीं कर सकता, ठीक है ना। बीवी साहिबा सामने आ जाती है, क्या मतलब, मैं जानती हूँ उसको, मैं लिबास हूं इसकी, अल्लाह ताला ने लिबास बनाया है, लिबास प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और बाकी लश्कर बीवियों को क्यों नहीं लेकर के जाता था? इसलिए कि बाकी लश्कर के ऊपर अमीर साहब का डंडा होता था, अमीर साहब के ऊपर तो कोई डंडा नहीं होता ना, लश्कर के ऊपर तो अमीर साहब का डंडा है, ठीक है। तो लश्कर बीवियां साथ नहीं लेकर के जाते थे, सिवाय इसके कि शायद वो बहुत ही चीफ वगैरह किस्म के हों उसके अंदर, तो उनकी बीवियां ज्यादा से ज्यादा जाती थी। तो गुनाहों से बचने के लिए बीवी साहब को इन्वॉल्व रखें अपने साथ, हत्ता के फोन का भी एक्सेस बीवी के पास होना चाहिए, ठीक है ना, वरना फोन के ऊपर तो छुप करके फिर सब कुछ ही हो सकता है, हत्ता के बाकायदा किसी के साथ ताल्लुक भी बन सकता है। और हजरत जो है वो जॉब पे गए, पता चला जॉब के साथ ही उधर निकल गए, आजकल तो बहुत आसान हो गया है सब कुछ, राइट, पहले तो मुजरा देखने के लिए शहर के किसी कोने में जाते थे ना, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते थे, आज तो घर के अंदर मुजरा मौजूद है ना हर एक के, ठीक है। तो इस वजह से घर के अंदर सारे के सारे असबाब मौजूद हैं गुनाह की इंतहा तक जाने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को अपना अपने साथ शामिल करें जो अल्लाह ताला ने गुनाह से बचने के असबाब दिए हैं, नेक सोहबत है जो हाँ मयसर है, उन नेक सोहबतों के साथ अपने आप को जोड़ें और बुरी सोहबतों से अपने आप को हटाएं, जिन दोस्तों के साथ बैठ करके डर्टी जोक्स शेयर किया करते हैं, जिन ग्रुप्स के अंदर जो है वो फिल्ती किस्म की बातें हुआ करती हैं, उन ग्रुप से अपने आप को निकालें, तब गुनाह से बच सकेंगे। जिन लॉन्डों के साथ जो है वो रात को जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके अंदर पता नहीं वो किस किस चीज को देखा करते हैं और क्या क्या चीजें दिखाया करते हैं, स्कूल्स के अंदर जो बच्चे जाते हैं तो दूसरे बच्चे टैब्स लेकर के आते हैं, फोन्स लेकर के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ने टैब और फोन दिए हुए होते हैं, अल्लाह उन लोगों को हिदायत अता फरमाए, जो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने जो है वो फुल इंटरनेट एक्सेस के साथ ये डिवाइसेस दी हुई हैं, अब वो खुद भी गंद बला देख रहे होते हैं और सारे दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो इन चीजों से दूर करें, अपने बच्चों को भी दूर करें, अपने आप को भी दूर करें, अपनी औरतों को भी दूर करें, अगर आपकी औरतें इस किस्म के माहौल के अंदर जा रही हैं तो, चाहे वो खानदान का क्यों नहीं माहौल हो। खानदान के माहौल का मतलब ये कोई थोड़ी है कि अब गुनाह जायज हो गया या गुनाह का अब कोई असर नहीं होगा उनके ऊपर, गुनाह के माहौल के अंदर नहीं जा सकते चाहे वो खानदानी का हिस्सा क्यों ना हो। जिनके साथ वाजबी ताल्लुक रखना जरूरी है, खून का ताल्लुक है, तो बस मुलाकात करें, वापस आए, नाइट स्पेंड करने की क्या जरूरत है वहां पर, ठीक है ना। आखिरत जिसके लिए अहम होती है ना, उसके लिए बातें अहम है, और जिसके लिए दीन एक रिवायात का नाम है, तो ऑफ कोर्स उसने तो फिर खानदानी को सामने रखना है ना, उसने तो फिर दूसरों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को सामने रखना है, आखिरत की तो उसको फिक्र है नहीं। सार मामला आखिरत से शुरू होता है ना, जब भी तो ईमान वाले की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां बयान फरमाई है, ज़ालिकल किताबु ला रायब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता, और क्या है, वल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी युकीमून अस्सलाता वल्लज़ीना युनफिकून, जो कि अल्लाह ताला ने उनको अमवाल दिए हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद जहां आखिरत का जिक्र आया वहां पर युमिनूना के ऊपर इक्तफा नहीं किया, युमिनूना बिलगैब, हाँ जी जो गैब की खबरें बता दी हैं तो उनके ऊपर ईमान लेकर के आए, आमन्ना व सद्दकना, ठीक है ना। लेकिन जब आखिरत, वहीं पे आखिरत का जिक्र आ रहा है, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, युमिनून नहीं यूकिनून, यकीन रखते हैं वो आखिरत के ऊपर, ये यकीन ईमान का अगला दर्जा है, फर्म ईमान, एज इफ दे आर सीइंग इट, ठीक है ना। ईमान तो होता है बिन देखे किसी चीज को मान लेना, आखिरत के ऊपर इनका ईमान सिर्फ नहीं है, आखिरत के ऊपर इनका यकीन होता है कि जैसे कि आयत आखिरत इनके सामने रहती है, वो विटनेस कर रहे होते हैं आखिरत को, इसी को यकीन कहते हैं, राइट। और जिसके लिए आखिरत ईमान के दर्जे में भी नहीं है, उसके दीन का क्या क्या हैसियत है, उसके दीन की क्या वैल्यू है, उसके दीन की क्या फायदा होगा उसको इस दीन का, राइट। उठक बैठक करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो गुनाह की जगह को छोड़ देना, ये पहला मसला या हुक्म निकला इसके अंदर। दूसरा मसला ये कि अहकाम इलाहिया की अताअत में इंसान पर लाजिम है कि अपनी मकदूर भर कोशिश में कमी ना करे, ख्वाह इसका नतीजा बजाहिर कुछ बरामद होता नजर ना आए, नतज अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान का काम अपनी मेहनत और मकदूर को अल्लाह की राह में सर्फ करके, यानी जो उसकी कुदरत में है, इंसान की कुदरत में है, और इंसान की कुदरत में बहुत कम है, बहुत थोड़ी कुदरत दी है इंसान को अल्लाह ताला ने उस दुनिया के अंदर, राइट। वो अली रज़ी अल्लाह वाला वाक्य है ना, किसी ने पूछा हाँ भाई क्या है हमारी कुदरत में क्या नहीं है, उसने फरमाया खड़े हो जाओ, ठीक है ना, खड़ा हो गया वो बंदा, अली रज़ी अल्लाह फरमाया एक टांग जमीन से ऊपर कर लो, उसने एक टांग ऊपर कर ली, अली रज़ी अल्लाह फरमाया दूसरी टांग भी ऊपर कर लो, उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, ये है तुम्हारी कुदरत, तुम अपनी दोनों टांगे ऊपर करके खड़े नहीं रह सकते, इतनी तो तुम्हारी हैसियत है नहीं, इतनी लिमिटेड कुदरत है इंसान की, ठीक है। तो जो लिमिटेड कुदरत है ना, बस वही जिसको कि अभी साथियों के साथ बैठे हुए थे, हमारे वालिदान का ताल्लुक बिहार से है, इंडिया के बिहार से, ठीक है ना, तो वो बिहारी रिवायात और बिहारी रस्म रिवाज जो है ना वो बहुत होते थे। ठीक है, तो एक दफा हमारे वाला साहब मरहूम आलम उनकी वफ़ात फरमाए, फरमाने लगे कि जी वो हमारे यहाँ ना एक रस्म होती थी कि जब शादी होती थी ना तो नई नई बहू आई है। अब वो नई बहू आई है तो उसने जो है ना वो खाना पकाना पहले दिन से तो नहीं शुरू करना, तो जरा उसके भी कुछ दिन होते हैं, जरा बाद में तुम एक साथ निपटेंगे, है ना, अभी जरा तो कर लो जितने मजे करने हैं। तो एक रस्म होती है, हमारी वालदा ने बताया कि एक रस्म होती है उसको कहते हैं हंडिया चुलाई, हंडिया चुलाई। ठीक है ना, अब चुलाई का लफ्ज ये बिहारी लैंग्वेज का कोई लफ्ज होगा। तो वो क्या होता है उसके अंदर कि वो खाना बनता है, खाना तो बनाती हैं यानी क्या कहते हैं, खानसामा बनाते हैं या खानसामाइयां बनाती हैं, है ना, दूसरे लोग बनाते हैं। अब ये दुल्हन साहिबा जो है ना, इन दुल्हन साहिबा से कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो किचन में आए और जो उसकी कफगीर है ना, जो उसका चम्मच है ना, उसको चम्मच को पकड़ करके बस यूं करके चुला दें, यूं कर घुमा दें बस हंडिया के अंदर, बस ये अब आपकी रस्म हो गई। ठीक है ना, इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप बस हंडिया चुला दें। ठीक है ना, अब वो माशाल्लाह मजे से वालदा साहिबा जिस तरह जो एक्शन करके बताती थी ना, वो एक्शन भी बड़ा मजे का होता था। ठीक है ना, हंडिया चलाना हम यूजुअली जो उल्टा तवाफ करते हैं, है ना, जब चाय चलानी, चाय के अंदर चीनी चलानी हो तो यूं करके उल्टा तवाफ चलाते हैं ना। हमारे हजरत ने तो हमारी इसलाह फरमाई कि तो आप क्या बार बार उल्टा तवाफ कर रहे होते हैं, है ना, तवाफ की डायरेक्शन में चाय को घुमाएं, चम्मच को घुमाएं, तवाफ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारी वालदा भी जो है ना वो उन्होंने माशाल्लाह सीखी भी होगी किसी जगह से, तो वो यानी तवाफ की डायरेक्शन में चला करके दिखाती थी अपने हाथ को। बहरहाल यानी हमने बस हाथ चलाना है, हमने हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बस इतना करें, नतीजे अल्लाह ताला ने करने होते हैं। ठीक है, तो फरमाते हैं कि नतीजे अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान का काम अपनी मेहनत और मकदूर को अल्लाह की राह में सर्व करके अपनी बंदगी का सबूत देना है। ठीक है, कि बस मैं बंदा हूं, मैं इतना ही कर सकता था, मेरे बस में बंदगी मेरा काम है, आपका हुक्म है। आपने फरमाया वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इबादत के अलावा तो मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए पैदा ही नहीं किया। ठीक है, तो जो आपका हुक्म है मैं तो आपका हुक्म मैंने बजा लाना है। ठीक है ना, और हुक्म क्या है वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है, और उनमें से एक बड़ा ऑल एनकम्पसिंग हुक्म मौजूद है, ऑल एनकम्पसिंग विद इन वन आयत ओनली, है ना, फत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, अल्लाह का हुक्म है इत्तबा करो उनके रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू करने वाले हैं। तो कौन है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम, फिर सहाबाए कराम, फिर जो है वो अहलुल्ला मशाए उलमाए कराम जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले अहले हक जो हैं, अल्लाह का हुक्म है उनकी इत्तबा करो, उन्होंने जिस चीज इसके अंदर जैसे मेहनत करी, सुन्नत तरीके से मेहनत करी, वैसे तुम भी मेहनत कर लो, करना कराना तुम्हारी मेहनत ने कुछ भी नहीं है, करना तो अल्लाह ने है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है उस हुक्म के ऊपर अमल करना, यही तो बंदगी है, और तुम्हें बंदगी के लिए पैदा किया किया गया है, तो बस इतबा करो अपने बड़ों की, दैट्स इट, खलास करो, तुम्हारी मौत आ जाएगी तुम्हें हम वापस बुला लेंगे, तुमने दुनिया को ठीक नहीं करना, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम तो अपने नहीं कर सकते, है ना, तुम तो अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, तुम तो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, तुम वो करो जो मेरे नेक बंदों ने किया था। जब भी तो हम सूरह फातिहा के अंदर दुआ मांगते मांगते सारी जिंदगी बूढ़े हो गए, इहदिनस सिराते मुस्तकीम सिराफ अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते के ऊपर जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ। हमारी जिंदगी का बस यही हासिल है। ठीक है, तो जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने दरवाजे सब बंद होने और तारीखी रिवायात के मुताबिक मुकफ्फल होने के बावजूद दरवाजे की तरफ दौड़ने में अपनी पूरी कुव्वत खर्च फरमा दी, ऐसी सूरत में अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ से इमदाद व इआनत का भी अक्सर मुशाहिदा होता है, अक्सर, नॉट ऑलवेज, अल्लाह की मदद ऑलवेज नहीं आती, अक्सर आ जाती है, और जब हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो अक्सर भी नहीं आती, अकल आती है, बहुत कम आती है। ठीक है, जब तकवीनी फैसला हुआ हुआ होता है, लोग बड़े इखलास के साथ और बड़े सुन्नत तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे अकाबरी ने देवबंद ने जो हिंदुस्तान के जिन उलमा ने सही तरीके से मेहनत करी, है ना, शामिली के महाज के ऊपर जाने दे दी, और वो सारे अहले हक उलमा थे, क्या कोई नतीजा बरामद हुआ उससे, आजादी मिल गई, अंग्रेज भाग गया, नहीं, लेकिन क्या वो उलमा नाकाम हो गए, नहीं, वो अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब हो गए।
और फिर उसके बाद ये तहरीक उन्होंने जारी रखी, रेशमी रुमाल की तहरीक हो, खिलाफत की तहरीक हो, जो और इस किस्म की तहरीकें हो, राइट, खाकसार तहरीक, तो अहरार तहरीक, तो उलमाए देवबंद की जमात, जमीयत उलमाए हिंद की तहरीक, और न जाने क्या क्या नतायज पैदा हुए, आज तक तो नजर नहीं आते। अभी तक तो हम आजाद हुए नहीं है, जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर आजाद लगते हैं, जहनी तौर पर तो हम गुलाम के गुलाम है ना। तो ये जो गुलामी का दौर होता है ना, इसके अंदर तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही होती। अब क्या करे बंदा, कोशिशें करना छोड़ दे? नहीं, फत्तबे सबीला मन अनाब इलैया। वो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह की खातिर उन्होंने मेहनत मेहनतें और मुजाहिदे किए, हमें भी करते रहना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ये, ठीक है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह वालों के पीर थे वो, अल्लाह वालों के पीर थे। लोग उनके पास आके पूछते थे कि हजरत, हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, छोटे छोटे पीरों के जो है वो लोग कब्रों को जो है वो सजदागाह बना लेते हैं, आप तो इतने बड़े पीर हैं कि आपसे तो बड़े बड़े पीर आकर के बैठ हो जाते हैं, आपकी खबर के साथ पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, राइट। तो उन्होंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, फिक्र ना करो, मेरी खबर ही नहीं मिलेगी इनको, ठीक है। तो इनकी तो कभी वाकई नहीं मिली, पर ऐसी किसी ने बना दिया शायद, अगर बनाया है तो इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, नाकाम दुनियावी एतबार से नाकाम, राइट। अंग्रेजों को शिकस्त देना तो दूर की बात, इवन सिखों को शिकस्त नहीं दे सके, सिखों ने जो मार पिटाई करी है उसके बाद 1947 के अंदर मुसलमानों के साथ, रंजीत सिंह ने जैसी मार पिटाई करी है मुसलमानों के साथ, ठीक है। तो नतायज तो मुस्तकिल फेलियर, और आज और भी ज्यादा फेलियर, आज तो ऐसा फेलियर है कि जिसको हमें हम कामयाबी समझना शुरू हो गए, आज के तो फेलियर ही मजे का है, आज का तो फेलियर ही ऐसा मजे का है, क्योंकि दज्जाल का फितना अपने उरूज पर पहुंच चुका ना। तो अब तो पहले तो फेलियर होते थे तो नजर आ जाता था कि हाँ भाई फेल हो गए, आज का फेलियर तो जो है ना वो यानी स्क्रीन के ऊपर आपको कामयाबी बना करके दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आज तो हालात ही बिल्कुल अजीब व गरीब है। तो इन लेकिन जिनको पता है, उनको पता है कि ये फेलियर ही है, ये कोई कामयाबी वामयाबी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि मकसद तो अल्लाह की रजा है, ठीक है ना। दुनिया का नतीजा ये नहीं कि आप दुनिया के नतायज को बिल्कुल इग्नोर कर दें या बिल्कुल उनके बारे में सोचें नहीं, नहीं, इंसान की तबीयत ऐसी है कि रिजल्ट फोकस होना उसके लिए जरूरी है, वरना उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे उसने एफर्ट करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है। अगर रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा तो प्लानिंग नहीं कर सकेगा, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकेगा, राइट। यू हैव टू सेट योर गोल्स, तो फिर क्या करें, गोल्स को सेट करना भी जरूरी है, वरना मेहनत ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम जो जो जिहाद में जाते थे, क्या नाकाम होने की नीयत लेके जाते थे? क्या नाकाम होने के लिए जाते थे? बदर में नाकाम होने के लिए गए, उहद में नाकाम होने के लिए गए, कामयाब होने के लिए गए ना, राइट। कामयाबी के लिए प्लानिंग करी ना, उहद के अंदर फलाने को उधर खड़ा कर रहे हैं, उधर खड़ा कर रहे हैं, ऐसे जो है वो अटैक होगा, ऐसे जो है वो डिफेंस होगा, ये होगा वो होगा, ये क्या नाकामी के लिए किया किया था सारा का सारा? नहीं, कामयाबी के लिए किया था ना। तो यू हैव टू बी गोल फोकस, बट नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, इट कैन नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इट हैज टू बी योर सेकेंडरी प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी ईमान वाले की सिर्फ अल्लाह और आखिरत, पहली तरजीह अल्लाह और आखिरत, दूसरी तरजीह हो दुनिया की, दुनिया का फायदा, ठीक है। लेकिन ये आसान काम तो नहीं है, पता चला आपने इतना जो है वो दुनिया के नतायज के ऊपर फोकस करके प्लान बनाया, इतनी मेहनत करी, इतने लोगों को जो है वो आपने इंस्पायर किया, और फिर जो है ना वो आप कह रहे हैं नहीं, दिस वाज नॉट सपोज टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस वाज सपोज टू बी योर सेकंड प्रायोरिटी। तो इसके लिए फिर क्या करें कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेकंड थिंग्स सेकंड, ये कैसे मेक श्योर करें इसको? तो इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? इसके लिए फिर पहले से जहन साजी, तरबियत चाहिए होती है इसके लिए। बेतरबियत इंसान फिर ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत हेयरलाइन डिफरेंस की तरह की चीज है, ये हेयर लाइन डिफरेंस समझते हैं ना, ये बहुत बारीक फर्क है इन दोनों के दरमियान। तो कैसे इसको मेक श्योर करें? अगर ये गलत हो गया, तरतीब आपने उलट दी, दुनिया की फायदा, दुनिया का की कामयाबी मिले ना मिले, आखिरत की तो नाकामी ही मिलेगी फिर, क्योंकि आखिरत को आपने नंबर वन फोकस बनाया ही नहीं, नंबर टू फोकस बना दिया था, आखिरत में नाकाम हो जाएंगे हमेशा हमेशा की नाकामी। हाउ टू मेक श्योर, कि तरतीब सही रहे उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। तरतीब को ठीक रखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होती है तरबियत जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और दूसरी चीज क्या होती है जी, दूसरी चीज क्या होती है आप बता दें तो फिर हम आपको पीछे छोड़ दें, क्लास का टाइम तो खत्म हो गया। ठीक है, तरबियत ये तो पहली चीज होती है। व्हाट इज द सेकंड थिंग जिसकी जरूरत होती है टू मेक श्योर दैट नंबर वन प्रायोरिटी नंबर वन रहे और नंबर टू प्रायोरिटी नंबर टू रहे। दूसरी चीज क्या होती है, मुरब्बी, आम का मुरब्बा। भाई तरबियत की बात तो हो चुकी है यार, जब तरबियत बगैर मुरब्बी के हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? तो आपका जवाब गलत है। दूसरी चीज इल्म, तरबियत के अंदर जो है ना, ये इल्म के बगैर तरबियत नहीं होती, जाहिलों जहालत के साथ तरबियत नहीं होती, तरबियत में इल्म इज पार्ट ऑफ तरबियत, इस वाली तरबियत के लिए कम से कम इल्म इज पार्ट ऑफ तरबियत। ठीक है, क्या चीज चाहिए होती है दूसरी जी? गजवाए हुनैन याद है, गजवाए हुनैन और गजवाए उहद भी। ठीक है, गजवाए हुनैन में कौन लोग थे, क्या बेतरबियत याफ्ता लोग थे? बेतरबियत याफ्ता तो कोई भी नहीं था, मतलब थे, मतलब नए नए लोग भी थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुम, अशरा मुबशरा सहाबा और क्या क्या नहीं। असबाब की बात कर रहे हैं हम, दुआ दुआ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बात मानना नहीं। ठीक है, हुनैन के अंदर इतने जबरदस्त किस्म के तरबियत याफ्ता लोग है ना, ये भी उखड़ गए थे सारे के सारे। देन व्हाट हैपेंड, फिर उसके बाद क्या किया था? ठीक है, जो कि ओहद में भी किया था, ओहद में भी तो पैर उखड़ गए थे ना, यहां पर भी पैर उखड़ गए थे बेहतरीन तरबियत याफ्ता लोगों के। क्या किया था? कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स, याद दहानी है ना। जब केओस होता है ना, तो वो तरबियत वाला जो जो लेसन था वो जहन से निकल जाता है उस केओटिक माहौल के अंदर, सिचुएशन के अंदर, उस वक्त रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। तो गजवे हुनैन के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला से फरमाया, अब्बास आप आवाज लगाएं, पीपल वर कॉल्ड बैक, रिमाइंडर कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद है, आ जाओ। ठीक है ना, भागते वाले जो है ना वो होश में आए और 100 बंदे जो है वापस आए उस वक्त, ज्यादा उस वक्त भी वापस नहीं आए थे, आवाज हर जगह नहीं गई होगी जो भी है, लेकिन कुछ लोग वापस आए, फिर उसके बाद दोबारा से कदम जमने शुरू हुए। इसी तरीके से जो है वो ओहद के अंदर भी बुलाया गया था, रिमाइंडर होता है ये, तो यू नीड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स एज वेल। खाली ये नहीं कि तरबियत होके खत्म हो गई अब जो है वो बस, अब उसके बाद जो है वो सारा काम मुकम्मल हो गया, नहीं, रिमाइंडर्स फिर भी चाहिए होते हैं। बज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, मोमिनीन कौन, मोमिनीन तरबियत याफ्ता मोमिनीन, बगैर तरबियत याफ्ता कोई थोड़ी ईमान वाले बन सकते हैं, ठीक है ना? तो तरबियत याफ्ता वालों को वज़क्किर, रिमाइंडर्स देते रहो, ये रिमाइंडर्स का सिलसिला खत्म नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नतायज जो है ना, ये हमारी नंबर वन प्रायोरिटी कभी भी नहीं बन सकते, अगर बन गए तो फिर दुनिया का तो नुकसान हुआ ना हुआ आखिरत का नुकसान ही है। तो दूसरी बात यह है कि फिर आप जो है ना वो अपनी मेहनत को जारी रख नहीं सकते, या तो आप अपनी मेहनत को अबैंडन कर देंगे क्योंकि दुनिया के अंदर आपको नतीजे मिल ही नहीं रहे, सारे फेलियर हो रहे हैं, आप अपनी मेहनत को अबैंडन कर देंगे, या दूसरी सूरत क्या होगी, अगर आपका आपकी प्रायोरिटीज मैसअप हो गई, सेकंड को आपने फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को आपने सेकंड बना दिया, तो या तो आप अपनी मेहनत को छोड़ देंगे क्योंकि नतीजे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो नंबर वन प्रायोरिटी थी, अब वो मिल ही नहीं रहे, तो भाई अब क्यों मेहनत करें? ठीक है ना? या दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि तरीका बदल दो, ठीक है ना, क्योंकि नतीजे इंपॉर्टेंट है ना। तो अब सीधे तरीके से नतीजे नहीं मिल रहे, उल्टे तरीके से नतीजे हासिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? सीधा तरीका क्या है, जो सुन्नत से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की सुन्नत, ये सुन्नत होती है, ठीक है ना? हर चीज नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तो नहीं फरमाई, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। अब खुलफाए राशिदीन का जमाना तो बहुत लंबा है और उसके अंदर तो बहुत सारे, बल्कि तकरीबन सारे ही मुख्तलिफ शक्लें पेश आ गई सहाबा कराम के जमाने में। अबू बकर सिद्दीक के जमाना उठा करके देखें, इतना मुख्तलिफ जमाना, उमर फारूक का जमाना उठा करके देखें, इतना मुख्तलिफ जमाना। उस्मान गनी का जमाना उठा के देखें, ओहो क्या क्या फितने शुरू हुए आखिर में। और अली रजान का जमाना फितना ही फितना, राइट? अली रजान का जमाना फितना ही फितना, ठीक है? तो सहाबा कराम की सुन्नत जो कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के अंदर कवर हो जाती है, तो सही तरीका तो ये है। अब इसको नतायज नहीं मिल रहे, अब ये खिलाफ सुन्नत काम करेगा, है ना? दीन जो है वो गालिब नहीं आ रहा, तो चलो जी जरा मौसीकी शौक शौसीकी भी जरा इसके अंदर ऐड करें, लोगों को अच्छी पसंद आएगी, लोग दीन की तरफ माइल होंगे, है ना? तो जरा थोड़ी सी ना म्यूजिक श्यूजिक भी चलेगी, है ना? नतायज तो हासिल करने हैं ना भाई, है ना? या खवातीन औरतों को लेकर के आओ भाई, औरतों को सामने लेकर के आओ, औरतों से जो है वो बयान दिलवाओ, औरतों से जो है वो काम करवाओ, औरतों को जो है वो उनके साथ दूसरी औरतों के साथ गैर गैर महरम औरतों के साथ मिल करके, यू नो, वी हैव टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू अचीव आवर गोल्स। अब अगर औरतों को भी दीन में दाखिल करना पड़े या गैर औरतों के साथ बैठना पड़े तो वो भी कराए करेगा, पर्दा कॉम्प्रोमाइज करेगा, राइट? दूसरी मुहर्रमात, दूसरी जो जो हराम चीजें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि नतायज इंपॉर्टेंट हैं, नतायज इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए ज्यादा, ठीक है? और आज के दौर के अंदर, इस वक्त दुनिया के अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है? नतायज नहीं मिल रहे हैं ना, 2-250 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं मिल रहे, अब कॉम्प्रोमाइज शुरू हो चुका है। इल्ला माशाल्लाह, एक जमात तो रहेगी, नबी अलैहिस्सलाम का वादा है, एक जमात तो रहेगी मेरी सुन्नत के ऊपर, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत के ऊपर, और पकड़ी रहेगी अपनी दाढ़ के साथ इन चीजों को, लेकिन बाकी लोग नहीं पकड़ेंगे, ठीक है? अल्लाह ताला हमें उस जमात में से बना दे जो कि सवाद आजम के ऊपर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम को के रास्ते को हरगिज हरगिज ना छोड़ें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, वरना हमारे बस में ये सब नहीं है। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।